मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, मुख्य विषय के अंतर्गत भी मैं आप सबसे एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बातें करूंगा, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, सबको मिला करके मैं एक थॉट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले जो कुछ थोड़ी सी दूसरी घटनाएं हैं, खबरें हैं कह लीजिए, उन्हें देख लेते हैं। G7 का सम्मेलन जारी है, आप सब उसे टीवी पर भी देख रहे होंगे, अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे। डेफिनेटली ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि G7 जो संगठन है वो क्या है, क्या है, किस तरीके का है, क्या काम करता है, इसकी कितनी ज़्यादा शक्ति है, कितना ज़्यादा इसके पास पावर है, पॉपुलेशन कितनी है, GDP कितना है, क्योंकि तभी आप इसके महत्व को समझ पाएंगे। अन्यथा तो ठीक है, बहुत से सम्मेलन होते रहते हैं, तो G7 भी एक सम्मेलन हो रहा है, इससे बात बनेगी नहीं। और मैंने जानबूझकर यह काम आपके ऊपर छोड़ा है, ऐसा मैं जानबूझकर कर रहा हूं, बावजूद यह जानने के भी कि आप लोगों को शायद मेरी यह नीति पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में यही बात आएगी कि फिर हम डेली ऑडियो लेक्चर सुन क्यों रहे हैं, अगर हमको खुद ही करना है तो फिर आपकी जरूरत क्या है, इस तरह के विचार आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन दोस्तों, इसी विषय पर हम लोग मुख्य विषय के तहत बात करेंगे। फिलहाल मुझे विश्वास है कि आपने G7 संगठन के बारे में जानकारी हासिल कर ली होगी। अब देखिए, जैसे जैसे सम्मेलन आगे बढ़ रहा है, आपको कुछ बातें सुनने को पढ़ने को मिल रही हैं। यह कहाँ हो रहा है? स्लास एलमाउ पैलेस में हो रहा है। कुछ और चीज़ें जो आपके सामने आई हैं, जो एक इंटरेस्टिंग है कि इसके जो मालिक जोहान्स मुलर हैं, वो एक बार भारत आए थे, और जब भारत आए तो उन्हें एक कपड़े पर हाथी का बना हुआ चिन्ह दिखाई दिया, हाथी बना हुआ था, और यहाँ रहने पर उन्हें पता चला कि ये जो हाथी है ये बुद्धिमत्ता और मेमोरी का प्रतीक है। तो इसके बाद फिर वो गए और अपने होटल के साज सज्जा में उन्होंने हाथी को महत्व दिया, प्रोमिनेंटली आपको वहाँ हाथी दिखाई देगा। तो चूंकि ये भारत से जुड़ी हुई बात है, भारतीय संस्कृति के प्रति जो दूसरों के मन में भावना है उससे जुड़ी हुई बात है, तो मुझे लगता है कि अगर आप ये तथ्य जानते हैं तो हो सकता है कि एथिक्स के पेपर में या ऐसे राइटिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, कल अगर आपने टीवी चैनल्स देखा हो, मैं दूरदर्शन की बात करता, जब मैं टीवी की बात करता हूं तो आप दूरदर्शन से उसे जोड़ लिया कीजिए, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े दिए। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आंकड़े हैं, देखिए बहुत ज़्यादा अगर आप आंकड़ों के जाल में उलझेंगे तो आपके लिए वो चीज़ें बेकार हो जाएंगी। जो बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिनका कई तरह से आप उपयोग कर सकते हैं, केवल अपने को उन्हीं आंकड़ों तक सीमित रखना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि भारत जो है 17% आबादी वाला देश है, टोटल पॉपुलेशन के हम 17% हैं, लेकिन जो कार्बन का उत्सर्जन है हम सिर्फ 5% कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप हमें दोष मत दीजिए कि हम बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं, क्योंकि 17% तो हमारा राइट बनता है जबकि हम 5% कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जो हम अपनी जरूरत की जो ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं उसमें हम गैर जीवाश्म ऊर्जा पर 40% तक पहुंच गए हैं, और अपने लक्ष्य को हमने बहुत जल्दी हासिल कर लिया है। और आप देखिए कि भारत कैसे धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो दो आंकड़े हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, और देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल फोरम पर ये आंकड़े दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कम से कम इस पर डाउट नहीं करना चाहिए, राइट? इसके साथ ही साथ आपको मुझे लगता है कि एक तथ्य और जान लेना चाहिए कि जो भारत है ये G7 संगठन का सदस्य नहीं है, लेकिन जो संगठन होते हैं वो कुछ लोगों को बुलाते हैं, इन्वाइट करते हैं, है ना, आप कह लीजिए कि हम एक तरह से गेस्ट फैकल्टी हैं, वहाँ गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में वहाँ गए हुए हैं। लेकिन केवल हम ही नहीं हैं, कुछ और भी देश हैं, तो बेहतर होगा कि हम उन देशों के नाम जान लें, हो सकता है कि प्री में पूछ ही लिया जाए। तो ध्यान से सुन लीजिए, बस इसी से बात बन जाएगी। भारत हम हैं ही, अर्जेंटीना है, इंडोनेशिया है, सेनेगल है, और दक्षिण अफ्रीका है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका, ये वहाँ अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। और भारत को जो आमंत्रित किया जा रहा है, और टीवी चैनल्स पर आपने देखा होगा कि भारत को जो इतनी तरजीह दी जा रही है, वो इस बात को शो करता है कि दुनिया को अब ये लगने लगा है कि जो वैश्विक समस्याएं हैं, जब तक भारत को उन समस्याओं में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक उसका निदान नहीं हो सकता, और ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई छवि और महत्व का जीता जागता प्रमाण है। तो आपको ये तथ्य अपने दिमाग में रखना होगा। दोस्तों, जो नीति आयोग है उसने गिग वर्कर्स पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। गिग वर्कर्स क्या होते हैं, मुझे ध्यान आ रहा है कि 2-3 साल पहले के प्री एग्जामिनेशन में इसके बारे में पूछा गया था। बेसिकली गिग वर्कर्स को आप कह लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करते हैं, मतलब स्थायी एम्प्लॉय नहीं होते किसी भी संगठन के। जैसे अगर आपने कभी जोमेटो से ऑर्डर दिया हो कि हमें खाने के लिए ये चाहिए, तो एक व्यक्ति बाइक पर आता है और आपको दे करके चला जाता है। तो ये जो व्यक्ति है जो बाइक पर आया है वहाँ का गिग वर्कर है, वहाँ का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, कुछ समय के लिए वहाँ काम कर रहा है। जो संगठन होगा या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और बस बात खत्म। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो या तो वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा या जो भी होगा। तो फ्रीलांसर जो होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, तो इन्हें हम एक तरह से गिग वर्कर्स कहते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार एक अच्छा डेटा आपके लिए है और वो ये है कि हमारे यहाँ अभी लगभग 77 लाख लोग गिग वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं, 77 लाख लोग। ये डेटा अच्छा है और गिग वर्कर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। हमारा जो टोटल वर्क फोर्स है उस वर्क फोर्स का ये 1.5% है और रिपोर्ट में ये उम्मीद जाहिर की गई है या कह लीजिए कि भविष्यवाणी की गई है कि धीरे धीरे इनका प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है खासकर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, तो स्थायी कर्मचारी कम से कम रखे जाएंगे। लोगों को इसी तरह से वर्क फ्रॉम होम टाइप का दे दिया जाएगा कि भाई ठीक है, आप पार्ट टाइम आकर के काम कीजिए, जब तक एक दूसरे की ज़रूरत है तब तक कीजिए, इसके बाद आप फ्री हैं। दोस्तों, अब मैं आप आज के मुख्य विषय पर आता हूँ। अगर इस विषय को आप शीर्षक देना चाहें तो मैं यही कहूँगा कि अपने मस्तिष्क को उपजाऊ बनाएं। दोस्तों, चूंकि अभी रिजल्ट आए हैं और इस रिजल्ट में मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोगों को असफलता ही मिली है, तो स्वाभाविक है कि उनके मन में एक बहुत विचित्र किस्म की बेचैनी है, परेशानी है। तो अपनी परेशानी को मेल के जरिए मुझसे शेयर कर रहे हैं और एक अच्छी बात है, क्योंकि रास्ते तो यहीं से निकलेंगे, केवल मन में रखने से बात नहीं बनेगी। उसमें अलग अलग तरह के प्रश्न आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, वो सारी बातें मैं नोट करते चला जा रहा हूं, जो मैं आगे अपने खासकर डेली ऑडियो लेक्चर में आप सबको एड्रेस करूंगा, उनकी समस्या के निदान बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात जो मैं आज विशेष रूप से आप सबसे कहना चाहूंगा दोस्तों, वो ये कि कभी कभी मेरे पास रोजाना कुछ बड़े विचित्र किस्म के मेल आते हैं। उन मेल का स्वर क्या होता है कि सर, मैं योजना पत्रिका को सब्सक्राइब करना चाह रहा हूं, प्लीज इसके बारे में मुझे बताएं। ध्यान दीजिएगा, वो क्या प्रश्न कर रहा है। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ यह है, क्या मैं एलिजिबल हूं? ये प्रश्न वो मुझसे कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मेल आते हैं कि सर, आप ये तो दे ही रहे हैं, जैसे कि आप हमें अखबार और न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स देते हैं, तो बेहतर होगा कि उस क्लिपिंग्स में आप अंडरलाइन भी कर दें कि उसमें से कौन कौन से तथ्य जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो इससे हमें नोट करने में सहूलियत हो जाएगी और हमारा समय भी बचेगा। दोनों, सहूलियत हो जाएगी और हमारा समय भी बचेगा। दोस्तों, जब इस तरह के प्रश्न दिमाग में उठते हैं तो मेरा सजेशन है कि आपको ऐसे प्रश्नों की जांच करनी चाहिए अपने दिमाग के संदर्भ में, कि ये जो प्रश्न उठा रहा है या जिसको समस्या समझ लिया गया है और इस समस्या का निदान खुद न करके मैं दूसरों से पूछ रहा हूं, ये कौन सा दिमाग है, ये कैसा दिमाग है, क्या इस दिमाग में प्रशासक बनने की क्षमता है? ये पूछना चाहिए। आपको सारी चीजें कोई दूसरा ही करके दे दे, जैसे कि स्पून फीडिंग होती है, जैसे माँ होती है ना, छोटे से बच्चे को पहले चम्मच से दूध पिलाएगी, इसके बाद हाथ से कौर लेकर के खिलाएगी। अगर बड़ा वो बच्चा हो गया है और तब भी क्या उसके साथ यही किया जाना चाहिए? मतलब इस पर सोचना चाहिए। जो इस तरह के प्रश्न करते हैं उन्हें बहुत जरूरी है कि इन सारे अपने प्रश्नों पर वो पूरी गंभीरता के साथ विचार करें कि सर, आप डेली ऑडियो लेक्चर में हमें ये प्रोवाइड करते हैं, क्या इसके आप हमें पॉइंट्स भी नहीं दे सकते, इससे हमारा समय बच जाएगा? अगर आपको समय की इतनी परवाह है तो फिर कोई मतलब आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है आईएएस बनने के लिए, सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए। तो फिर आपको अपने निर्णय पर विचार करने में संकोच क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बड़ा काम कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा यह होता है कि आपके दिमाग की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि मैंने एक स्टूडेंट के बारे में बताया था, उमेश सैनी के बारे में, जो राजस्थान से हैं। उन्होंने ये बताया कि डेली ऑडियो लेक्चर से 27 क्वेश्चंस पूछे गए, और इसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे पास एक और स्टूडेंट का फोन आया। उनका नाम है राजेंद्र कुमार पटेल, जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से हैं। उन्होंने मुझे सूचित किया कि नहीं सर, केवल 27 क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए, वो तो डायरेक्ट पूछे गए थे, बल्कि आपने कुछ ऐसे सजेशंस दिए थे कि उनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं, और उसमें उन्होंने उदाहरण दिया कि आपने रॉकेट बॉय देखने की सलाह हम लोगों को दी थी कि वेब सीरीज रॉकेट बॉय देखें, और उस रॉकेट बॉय में मोनाजाइट की बहुत डिटेल में चर्चा की गई है कि वो मोनाजाइट है ना, जब उनको बनाना होता है, यूरेनियम बनाना होता है, तो किस तरह से वो केरल के शासक के पास जाते हैं, होमी भाभा जी, और वो बड़ा अच्छा प्रसंग है और बहुत बड़ा प्रसंग है। उन्होंने लिखा कि अगर हम उसे देख लेते हैं तो मोनाजाइट पर एक क्वेश्चन आया है बकायदे, अगर आपके पास सी सेट है तो उसका 78 क्वेश्चन मोनाजाइट पर ही है। बोले उसके आधार पर बड़ी आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये भी एक मस्तिष्क है जिनको 27 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक मस्तिष्क है कि 27 क्वेश्चन से बियॉन्ड भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब दो मस्तिष्क आपके सामने हो गए कि एक मस्तिष्क है जो लगातार अपनी समस्याओं, छोटी छोटी समस्याओं के बारे में, जिन्हें मैं बचकानी समस्याओं कहूंगा, आपसे मदद मांगते हैं, और दूसरी समस्या और दूसरा मस्तिष्क ऐसा है जिसे बताया एक जाता है और वो कर 11 लेता है। तो कौन सा मस्तिष्क उपजाऊ है? मुझे ये बताइए कि फिर इन दोनों में से किसका सिलेक्शन होना चाहिए। आप लोगों में से बहुत ने ये आप यू कहे जिज्ञासा व्यक्त की है कि सर, जिनको 27 क्वेश्चंस पता थे उनका क्या हुआ, और पूछना स्वाभाविक है। मैं आज आप लोगों को बता दूंगा कि उनका क्या होना था। आप बताइए कि क्या होना चाहिए जो 27 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर सकता। मैं मस्तिष्क की बात कर रहा हूं, वो मस्तिष्क तो उपजाऊ मस्तिष्क है ना। उनका सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप खुद बताइए और निर्णय ले लीजिए। और मुझे लगता है कि जो आप निर्णय लेंगे वो बिल्कुल सही फैसला होगा, या यूं कह लीजिए कि सही उत्तर होगा कि उसका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, प्लीज इस मुद्दे पर भी आप सबको विचार करना चाहिए, और विचार करने के बाद इस पर काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं। सोनी कुमारी इंदौर मध्य प्रदेश से, प्रिया रानी दिव्या भारती वैशाली बिहार से, और श्रुति गौतम बेगूसराय बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।